अरुणिमा उस समय डॉक्टर निशा के केबिन में बैठी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मन बना लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन नीरज अपने साथ पूरी सुरक्षा टीम लेकर आया था। उसका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अरुणिमा अपने फैसले से पीछे नहीं हट रही थी। ये उसके पास बचकर यहाँ से निकलने का एकमात्र मौका था। अगर वो यहाँ से नहीं निकल पाई तो न चाहते हुए भी आस्तिक के साथ सोने के लिए मजबूर होना पड़ता। डॉक्टर निशा केबिन में आई और अरुणिमा को देखकर मुस्कुराई। उन्होंने एक इंजेक्शन और कुछ टेस्ट किट्स बाहर निकाले ताकि अरुणिमा का टेस्ट कर सके। पर जैसे ही डॉक्टर निशा अरुणिमा के पास आकर उसके हाथ पर बीपी की मशीन लगाने वाली थी, अरुणिमा ने उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर निशा हैरानी से अरुणिमा की तरफ देख रही थी। ये एक आखिरी मौका था अरुणिमा के पास। अगर इसके लिए उसे किसी के सामने झुकना भी पड़ता तो भी वो पीछे नहीं हटती। अरुणिमा ने डॉक्टर निशा का हाथ पकड़कर उनके सामने मदद की भीख मांगनी शुरू कर दी। निशा, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इंसानियत के नाते मेरी मदद करो। डॉक्टर निशा अचानक घबरा गई, क्योंकि ये रवैया अरुणिमा का नहीं था, वो बिल्कुल विपरीत लग रही थी। निशा हैरानी से अरुणिमा को देखकर बोली, अरुणिमा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी नीरज को बुला कर लाती हूँ। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर निशा वहाँ से जा पाती, अरुणिमा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं निशा प्लीज़, तुम नीरज को मत बुलाओ और सिक्योरिटी को भी कुछ मत बताना, मुझे उनसे बचाने के लिए ही तुम्हारी मदद चाहिए। अरुणिमा रोते हुए निशा से कहती है तो निशा उलझन भरी निगाहों से उसे देखती हैं और हैरानी से पूछती हैं, भगाने के लिए, मतलब? मैं समझी नहीं अरुणिमा, तुम क्या कहना चाहती हो? अरुणिमा को पता था कि डॉक्टर निशा रायचंद की डॉक्टर थीं, इसीलिए वे इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देंगी। लेकिन बाकी सारी बातें एक तरफ, अरुणिमा ने महसूस कर लिया था कि डॉक्टर निशा दिल की बुरी नहीं है, उनका स्वभाव काफ़ी सरल था। हालांकि वे अपने काम से काम रखती थी, लेकिन वे एक नरम दिल और अच्छी इंसान थी। इसी उम्मीद में अरुणिमा ने उन्हें अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बता दिया, आस्तिक से शादी, कल रात सालगिरह की पार्टी में जो कुछ हुआ, सब कुछ। अपनी सारी आपबीती सुनाने के बाद अरुणिमा डॉक्टर निशा के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने डॉक्टर निशा से कहा, डॉक्टर मैंने अपने माता पिता की बात मानकर आस्तिक से शादी की थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि भरोसा रखो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अपनी माता पिता की खातिर मैं पिछले एक साल से सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन इस एक साल में मैंने इस अकेलेपन का बोझ अकेले ही उठाया है और मैं ये बोझ किसी और पर डालना भी नहीं चाहती, पर अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा, मैं हार चुकी हूँ, मेरी मानसिक हालत बिगड़ने के कगार पर है, मैं अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहती। निशा तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हारा तो काम है लोगों को जीने की उम्मीद देना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में है, अगर तुम चाहो तो इसे बचा सकती हो, वरना मेरे पास जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। डॉक्टर निशा ने जब अरुणिमा की सारी कहानी सुनी तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि पिछले एक साल से जिस अरुणिमा को वे देख रही थीं वो असलियत में किस हालात से गुजर रही थी। अरुणिमा की हालत पर अफसोस करना डॉक्टर निशा को भी हैरान कर रहा था, क्योंकि रायचंद परिवार शहर का सबसे बड़ा और रईस परिवार था। दौलत, शोहरत और नाम के लिए वो खानदान पूरे शहर में सबसे ऊपर था। उनकी शानो शौकत को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके घर में उनकी अपनी बहू इतनी प्रताड़ना के साथ रह रही है। अरुणिमा रोते हुए डॉक्टर निशा से आगे कहती है, मैं उस घर में सिर्फ एक सामान हूँ, आस्तिक के साथ या तो सिर्फ मीटिंग्स के लिए बाहर जाती हूँ या बड़ी बड़ी पार्टियों में शोपीस की तरह इस्तेमाल की जाती हूँ, और बाकी समय मैं उस घर में किसी कूड़े की तरह पड़ी रहती हूँ। आज तक उसने मेरे साथ जितना हो सके उतना बुरा व्यवहार किया है, लेकिन आज रात, अरुणिमा अपनी बात अधूरी छोड़ देती है और रोने लगती है। डॉक्टर निशा उसकी मनोदशा समझ सकती थी, वे जल्दी से अरुणिमा को संभालती हैं और उसके सामने पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहती हैं, तो इसलिए आस्तिक तुम्हारा टेस्ट करवाना चाहता है ताकि वो देख सके कि तुम वर्जिंग हो या नहीं। अरुणिमा फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सिर हिलाती है। डॉक्टर निशा गहरी सोच में पड़ गई। उन्होंने अरुणिमा की हालत देखी और उसकी सारी आपबीती सुनने के बाद उनके अंदर भी हमदर्दी का भाव आ गया। लेकिन वे सिर्फ एक इंसान नहीं थीं, बल्कि रायचंद परिवार की डॉक्टर भी थीं, इसलिए वे आस्तिक को भी अच्छी तरह से जानती थीं। उन्होंने गंभीरता से कहा, ये सब तो ठीक है अरुणिमा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगी? मतलब नीरज बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पर शक कर लेता है, उसे बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। और फिर आस्तिक, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गायब होने की खबर सुनकर वो शांत बैठेगा? वो तब तक तुम्हें ढूंढता रहेगा जब तक तुम उसे मिल नहीं जाओगी, और अभी तो तुमने ही कहा कि वो तुमसे बच्चा चाहता है। अरुणिमा ने अपने आंसू पोंछते हुए तुरंत कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। मैं आस्तिक के बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। मुझे इस नरक से निकलने का बस यही एक रास्ता नजर आ रहा है। डॉक्टर निशा ने उसे इतना परेशान और हारा हुआ देखा तो आखिरकार उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। सामने के दरवाजे पर नीरज और सुरक्षाकर्मी खड़े थे, इसलिए वहां से जाना खतरनाक हो सकता था। डॉक्टर निशा ने उसे अपने केबिन के पिछले दरवाजे से जाने के लिए कहा, जो अस्पताल के मॉर्चरी एरिया से होते हुए जंगल के रास्ते तक जाता था। अरुणिमा हैरानी से डॉक्टर निशा को देख रही थी, हालांकि उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ नजर आ रही थी। जाने से पहले वो डॉक्टर निशा को गले लगाती है और डरते हुए कहती है, निशा तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। डॉक्टर निशा ने दिलासा देते हुए कहा, जाओ मैं नीरज और बाकी सबको संभाल लूंगी, और डरो मत मैं तुम्हारी रिपोर्ट भी बदल दूंगी। आस्तिक को तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अरुणिमा ने डॉक्टर निशा को गले लगाया और उनके केबिन के पीछे के रास्ते से निकल गई। वो सीधे मॉर्चरी पहुंची, जहां शवों के बीच से गुजरते हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे उल्टी आ रही थी, लेकिन अपनी आज़ादी के लिए उसने खुद को काबू में रखा। अपने दुपट्टे से नाक ढकते हुए वो किसी तरह मॉर्चरी से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, तेज रोशनी ने उसकी आंखों पर प्रहार किया। उसने जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब उसने धीरे धीरे अपना हाथ हटाया और चमचमाते सूरज को देखा तो उसे पहली बार राहत का एहसास हुआ। वो अस्पताल के पिछले दरवाजे तक पहुंच गई थी, जहां ना कोई सुरक्षाकर्मी था और ना ही कोई उसे पहचानने वाला। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, उसे यहाँ से भी जल्दी निकलना था। उसने अपने दुपट्टे से चेहरा ढका और इधर उधर देखते हुए सड़क पार करके दूसरी तरफ चली गई। आखिरकार एक साल की कैद के बाद अरुणिमा आजाद हो गई थी। उसे कैसा महसूस हो रहा था ये वो खुद भी नहीं बता पा रही थी। खुशी, दर्द, तकलीफ और नई उम्मीदें, सब कुछ एक साथ। जैसे जैसे वो भाग रही थी, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। राह चलते लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन अरुणिमा को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी तरह वहां से निकलना चाहती थी। रायचंद परिवार शहर का जाना माना नाम था और अरुणिमा का चेहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं था। अरुणिमा बस भागे जा रही थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। उसके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उसके कदम नहीं रुके। वो हाईवे से होते हुए कच्चे रास्ते पर पहुंच गई। उसे जल्द से जल्द बस स्टैंड तक पहुंचना था। वहां से किसी की मदद लेकर वो अपनी दोस्त अवनी के पास जाना चाहती थी।
उसे बस एक ही सहारा नजर आ रहा था, अवनी। अपने माता पिता से उसे कोई उम्मीद नहीं थी, जिन्होंने पिछले एक साल में उसकी खबर तक नहीं ली। उसे यकीन था कि अवनी उसकी मदद जरूर करेगी। अरुणिमा का प्लान था कि वो किसी ऐसे द्वीप पर चली जाए जिसका कोई नामो निशान ना हो और जहां आस्तिक उसे कभी तलाश ना कर पाए। भागते भागते शाम से रात हो गई थी। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स चल चुकी थीं। अरुणिमा अंधेरे में भी भागती जा रही थी। उसके पैरों और पेट में दर्द होने लगा था। उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था, लेकिन अरुणिमा हार मानने को तैयार नहीं थी। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था और वो इसे गंवाना नहीं चाहती थी। जैसे ही अरुणिमा हाईवे से होते हुए कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ी, वैसे ही वहां अंधेरा गहरा चुका था, क्योंकि वहां से जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। वहां ना तो कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई रोशनी। अरुणिमा के पैर सुन हो चुके थे और वो जोर जोर से सांस लेते हुए बेधड़क भागे जा रही थी। कच्चे रास्ते पर उसे कोई गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही थीं जिनकी रोशनी में देखने में मदद मिल सके या फिर वो किसी से लिफ्ट की उम्मीद कर सके। अरुणिमा थोड़ी हैरान हो गई। ये कच्चा रास्ता हाईवे को उसके शहर से जोड़ता है, ऐसे में यहाँ गाड़ियां होना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ एक भी गाड़ी नहीं थी। ये देखकर अरुणिमा को थोड़ा अजीब लगा। फिर भी अरुणिमा ने अपनी आंखों से ही रास्ता पहचानने की कोशिश की और आगे बढ़ती रही। न जाने क्यों उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे लग रहा था कि वो गलत दिशा में जा रही है, पर वो इस वक्त रुक नहीं सकती थी। आखिरकार एक जगह पर जाकर उसे रुकना ही पड़ा, क्योंकि उसने देखा कि आगे की तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और जंगल था। वहां कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर अरुणिमा पूरी तरह चौंक गई, क्योंकि उसके पास जाने के लिए आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। अरुणिमा घबरा गई और रास्ता तलाशने लगी। वो धीरे धीरे अपने कदम दूसरी दिशा की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। अरुणिमा डर गई और डरते हुए पीछे देखा। तभी उसकी नजर पीछे कच्चे रास्ते से आ रही दो काले रंग की स्कॉर्पियो पर पड़ी। इससे पहले कि अरुणिमा कुछ कर पाती या वहां से भाग पाती, वे स्कॉर्पियो तेज रफ्तार से अरुणिमा के पास आ गई। अरुणिमा का पूरा शरीर डर से जकड़ गया था। उसकी आंखें पत्थर जैसी हो गई थीं और वो अपनी जगह पर ही चढ़ हो गई थीं। दोनों स्कॉर्पियो अरुणिमा के पास आकर उसे घेर लेती हैं। तभी एक स्कॉर्पियो पर दरवाजा खुलता है और उसमें से आस्तिक उतरता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वो गुस्से में अरुणिमा की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की।